ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग मेरे बात दोहराइए, हाँ मैं एकदम धीरे से बोलता हूँ, आप आराम से मेरे बात में दोहराइए। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय से 29वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष और चेतना, और हम सब लोग श्रद्धानंद हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। समम पश्यन् हि सर्वत्र समं पश्यन्नि सर्वत्र सम अवस्थितं ईश्वरं सम अवस्थितं ईश्वरं। 13.29 न हीनस्त्यात्म आत्मानां न हीनस्त्यात्मनान आत्मानाम। दोबारा बोलेंगे, न हीनस्त्य आत्मनम आत्मानाम ततो याति परम गतिम ततो याति परम गतिम। शब्दशः अर्थ इस प्रकार से हैं, समम यानी समान रूप से, पश्यन यानी देखते हुए, ही यानी निश्चय ही, सर्वत्र यानी सब जगह, सम अवस्थितम यानी समान रूप से स्थित, ईश्वरम यानी परमात्मा को, न नहीं, हीनस्ति नीचे गिराता है, आत्मना मन से, आत्मानाम आत्मा को, ततः तब, याति पहुंचता है, पराम दिव्य गतिम गंतव्य को। अर्थ इस प्रकार से है, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी भ्रष्ट नहीं करता, इस प्रकार वो दिव्य गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य में लिखते हैं, जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से अलग हो गया है, किंतु यदि वो समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा रूप में सब जगह विराजमान है, अर्थात यदि वो भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वो अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकता, और इसलिए ऐसा करते करते वो धीरे धीरे वैकुंठ की ओर बढ़ जाता है, भगवान के धाम की ओर बढ़ जाता है। सामान्य रूप से मन इंद्रियों के तृप्त करने के कार्य में बिजी रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, तो मनुष्य आध्यात्मिक ध्यान में आगे बढ़ने लगता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये श्लोक जो है वो सब लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले ही वाक्य में तात्पर्य में लिखा है कि हम सब लोगों ने ये जीवन जो है ना अभी का आज का, ये अपनी इच्छा से स्वीकार किया है। हमने सोचा है कि हमको इंद्रियों का भोग चाहिए, भगवान से अलग रहना है हमको, इसलिए हम लोग अपने ही वजह से इधर आए हैं। अभी हम लोग भगवान को कोसते हैं बिल्कुल दिल खोल के, लेकिन हम लोग अपनी वजह से इधर है, अपनी इच्छा की वजह से इधर है। हमने कुछ चाहा था, उसका फल हमारा आज का जीवन है, सब लोगों का। आज आप जो भी कुछ हो, आपने कुछ चाहा था, उसका परिणाम आज आपको दिख रहा है। आज जो कुछ चाह रहे हो, उसका परिणाम आगे दिखेगा। तो किसी भी स्थिति को, किसी भी दूसरे को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए कि ये तुम्हारे वजह से हो गया। देखो, तुम्हारे वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, तुम्हारे वजह से मेरा ऐसा हुआ, तुम्हारे वजह से मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ, तुम डॉक्टर ने मेरा दवाई ठीक नहीं दिया इसलिए मेरा रिश्तेदार मर गया। हमारा प्रवृत्ति कैसे रहता है, हमेशा दूसरों को तुरंत दोष लगाना, दूसरों की ओर उंगली दिखाना, दूसरों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना, और खुद मैं कैसा ठीक था और बाकी सब लोग कैसे गलत थे, ये हमारा मेन प्रवृत्ति रहता है। चाहे हम गरीब हो या अमीर हो, पढ़े लिखे या अनपढ़ हो, गांव के हो शहर के हो, सबकी प्रवृत्ति कैसे है। कोई भी चीज़ घटना घटी और बुरी घटी, तो बुरी घटी तो सबसे पहले दूसरों को उंगली दिखाने का कि इसकी वजह से हुआ, वो इसकी वजह से हुआ, और अच्छा हो गया तो केवल मेरी वजह से हुआ है कि नहीं, मैंने किया। कोई स्कूल का अगर कोई लड़का रैंक में आया ना, तो टीचर बोले कि ये मेरा विद्यार्थी है, मेरे क्लास में था वो, मैं क्लास टीचर हूँ उसकी। कोई अगर हिंदी विषय में वो महाराष्ट्र में रैंक आया, तो हिंदी का टीचर का कॉलर टाइट, बोले मैं उसको हिंदी पढ़ाता था। तो अच्छा हुआ तो सब लोग अपने आप को, खुद को उसका जिम्मेदार मानते हैं कि सारा श्रेय मुझे है, और बुरा कुछ भी हुआ सारा गलती दूसरों का है, इसके वजह से ऐसा ऐसा हो गया। इसको कहते हैं भौतिक जीवन, मटीरियल लाइफ बोलते हैं इसको, जो भगवान को छोड़कर हम लोग अपना जीवन यहाँ पर जीना चाहते हैं, इसको भौतिक जीवन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हम भगवान से अलग हो गए। सिंपल, जब उनको भूलकर यहाँ पर कोई मजा करना चाहते हैं तो उनसे अलग होना निश्चित है, और उनको अलग अगर कुछ भी करते हैं तो माया हमको छोड़ती नहीं है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, आगे क्या उसके, निकटस्थ माया तारे झपटिया धोरे। तुरंत भगवान को छोड़ते ही माया बहुत दबी दबकर बैठी हुई है, तुरंत आपको पकड़ेगी वो, फिर जो भी आगे होता है उसके नियंत्रण में होता है, ऐसा है वो। सिंपल, जब गुनहगार आदमी होता है ना तो पुलिस उसको पकड़ लेती है, और उसके आगे पकड़ने के बाद में जो होता है वो पुलिस के नियंत्रण में होता है अपनी इच्छा से नहीं होता है, वैसे माया का काम है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, लेकिन इसके लिए एक सोल्यूशन है, इससे बचने के लिए, वो ये है कि हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं उसको पहचानना चाहिए हमको, जो हमारे अंदर भी बसे हुए हैं। आज एकादशी का दिन है ना, आज के दिन हम लोग हमारे अंदर बैठे हुए भगवान को और ज़्यादा रूप में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, थोड़ा समय देना चाहते हैं उनको, आज के दिन एक्स्ट्रा समय समझने के लिए कि हमारे अंदर भगवान है, इसलिए एकादशी का व्रत करते हैं, है ना, अन्न धान्य नहीं खाते हैं, केवल फल खाते हैं, और तो टाइम बचता है उसमें अधिक जप करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, भगवान के विचार में रहना पसंद करते हैं। आज के दिन, आज के दिन ज़्यादा गुस्सा वस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करते ही भगवान से हम अलग हो जाते हैं। मन को शांत रखना चाहिए, शरीर को ज़्यादा कष्ट देना नहीं चाहिए, भोजन वोजन खिला के ज़्यादा, तो आलस से आएगा, नींद आएगी, तो मन से भगवान के पास में रहने का प्रयास करते हैं हम। और जब भी हम भगवान के साथ पास में रहने का प्रयास करते ना, तो हमारी सारी समस्याओं को हम दूर होते हुए देखते हैं। तो इस श्लोक में लिखा है समम पश्यन्नि सर्वत्र, इसका मतलब क्या है कि भगवान केवल आपके अंदर नहीं है, भगवान सबके अंदर है। सबसे पहले हम भगवान को देखते हैं, हाँ मूर्ति में भगवान है, जब जाएंगे चर्च में तो चर्च की में जो मूर्ति है उसमें भगवान को देखते हैं, वो एक स्टेज नंबर वन है, वो वातावरण में हमको उस मूर्ति में भगवान को देखना बड़ा आसान होता है। सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं, आप भी हाथ जोड़ रहे हो, सबका ध्यान उनकी ओर है, आपका भी ध्यान उनकी ओर है, सबसे लाइट ज़्यादा उनके पर लाइट है, और आपका ध्यान उधर जाना बहुत स्वाभाविक है। तो वहाँ पर जाकर चर्च में या गुरुद्वारे में या जैन मंदिर में या अपने हिंदू मंदिर में या मुसलमान जिधर भी जाएंगे वहाँ पर जाकर भगवान को देखना आसान होता है। लेकिन स्टेज टू क्या है? स्टेज टू में हम उनके अंदर भी भगवान को देखते हैं कि हाँ ये भगवान है, लेकिन स्टेज टू उन्हीं को बाकी सब में भी देखते हैं, जितने भी जीव हैं इधर उनके अंदर भी उसको देखते हैं, वो स्टेज टू है। बहुत इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको मानते हैं लेकिन आपका अपराध करते हैं, क्योंकि आप में उनको देखते नहीं वो। लेकिन जब वो आप में उनको देखने लगेंगे ना, फिर आपका अपराध नहीं करेंगे, जो वंदन उनको करेंगे वैसा आपको भी करेंगे, क्योंकि आपके अंदर भी उसको देख रहे हैं वो। जैसे अगर कोई छोटी सी बेटी है, उसमें अगर मैं मेरी बेटी को देखता हूँ तो मैं उसको प्यार करने लगूंगा तुरंत, सिंपल। अगर मेरी बेटी परदेश में है और उसी उम्र की बेटी मेरे सामने आई, तुरंत मैं मेरी बेटी को उसके अंदर देखूंगा और तुरंत गले लगाऊंगा उसको अपनी बेटी की याद में। लेकिन जब मैं किसी के अंदर मेरी बेटी को नहीं देखूंगा तो मैं उसको इग्नोर करूंगा, दुर्लक्ष करूंगा उसको। और किसी को प्यार करना है तो अपनी किसी व्यक्ति को उसके अंदर देखना जरूरी है, और सबसे प्यार का दुनिया में करना है तो सब तो बेटे नहीं हो सकते मेरे, तो इजी क्या है सबसे प्यार करने के लिए? सब में भगवान को देखना। और भगवान को झूठ मूठ का देखने की जरूरत नहीं, सब में भगवान है, वो भी दिखाई नहीं पड़ रहे अभी, बाद में देखना दिखाई पड़ेंगे, लेकिन है वो ऑलरेडी। आपको दिखाई पड़ने से क्या होता है? अभी अंधा आदमी बोलेगा दुनिया है ही नहीं, क्योंकि उसको दिखता नहीं, लेकिन ऐसा है क्या? दुनिया है, सत्य ये कि दुनिया है, लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ता है। उस तरह से सबके अंदर भगवान है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर भगवान नहीं है। जब आपको दिखने लगेगा मतलब सत्य का दर्शन आप कर रहे हैं, सिंपल है, समझना ये बात। और एक स्टेज थ्री भी है। स्टेज थ्री क्या है? कि हम सारे जीवित लोगों के अंदर भगवान को देख रहे हैं अभी, लेकिन जो निर्जीव चीज है, जिसकी टेबल है, स्पीकर है, कुर्सी है, माइक्रोफोन है, टेबल है, ये ऐसी सोफा सेट है, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, इसमें भी भगवान को देखते हैं। इसमें जो भगवान का सही भक्त है ना, वो बाथरूम में ना पैर से बाल्टी को भी ढकलता नहीं हो कभी, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान को देखता है वो, इसलिए वो हाथ के उठा के बाजू में रखता है। आप इस माइक्रोफोन को पैर से हिला सकते हो ना, इसको भी आगे, मैं अभी उठूंगा तो इसको पैर से हिला के आगे उठ सकता हूँ, कन्वीनियंट है ना, अभी उठने का तो इसको पैर से ढकेल दिया और उठ के चला गया। लेकिन अगर मेरे मन में ये भाव है कि इस टेबल पर एक स्टैंड रखा है, इस स्टैंड पर एक गीता रखी हुई है, वो भगवान का दिया हुआ वचन उसके अंदर है, तो मैं उसको हाथ से ऐसे आगे करूँगा। और अगर आपके अंदर भगवान को देख रहा हूँ और वहाँ से कुत्ता आया तो उसको मैंने पैर से ऐसा बाजू में कर दिया, मतलब क्या हुआ कि मैंने आपके अंदर भगवान को देखा लेकिन कुत्ते के अंदर भगवान को नहीं देखा। लेकिन मेरे अंदर जितने भगवान है उतने कुत्ते के अंदर भी है, और वो पड़ोसी के कुत्ते के अंदर भी है और तुम्हारे कुत्ते के अंदर भी है, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो पड़ोसी के कुत्ते का लात मारेंगे, अपने कुत्ते से प्रेम करेंगे, ये भी एक भौतिक दृष्टि है, रोगी दृष्टि है ये। मराठी में कैसे बोलता है? अपला तो बाबिया, दूसराचा ते कार्ट, है ना, वो भी बच्चा है आप भी बच्चा है, लेकिन अपना बीबी को देख के प्रेम आता है मन में और दूसरे का बीबी को देख के गुस्सा आता है मन में, तो ये रोगी प्रवृत्ति है। तो स्टेज थ्री क्या है कि न केवल आप मूर्ति में भगवान को देख रहे हो, न केवल आप सारे जीव के अंदर भगवान को देख रहे हो, मनुष्य के अंदर नहीं, कुत्ता, बिल्ली, पंछी, मछली, पेड़ सबके अंदर भगवान को देख रहे हो, और स्टेज तीन है कि जो जीवित भी नहीं है उसमें भगवान को देख रहे हो। इसलिए आपका पैर कभी आगे नहीं आता है, हाथ ही आगे आता है हमेशा, इसको भी रखना है तो हाथ ही आगे आएगा, पैर नहीं आगे आएगा। और जैसे व्यक्ति इस स्टेज में आता है ना, तो उसका खुद का जीवन पहले आनंदी हो जाता है, दूसरे का तो बात की बात है ना, जब मैं आपका आनंद और रिस्पेक्ट करूंगा, आपके अंदर भगवान को देखूंगा तो आपको आनंद होगा, ये आगे की बात है, लेकिन पहले मुझे आनंद होगा क्योंकि मैंने आपके अंदर भगवान को देखा। सबसे पहले भगवान का भक्त बनने के बाद में खुद को खुशी होती है, याद रखना इस बात को, हमेशा याद रखना। भगवान की भक्ति करने से, भगवान से जुड़ने से सबसे पहले खुशी आपको होती है, खुद को होती है, उसके बाद बाकी लोगों को होती है, जो आपके सामने आजू बाजू में बैठे हुए हैं। और अगर आप प्योर भक्त बन गए, सेंट बन गए, तो आपके होने से ना केवल आपको लेकिन दुनिया को खुशी होगी। जहाँ जहाँ जाएंगे सबको खुशी बांटते हुए आप चले जाएंगे, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि बनेंगे आप। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर हम दुख भोग रहे हैं क्योंकि ना केवल हम खुद में भगवान को देखते नहीं, जो किसी के अंदर भगवान को देखते नहीं, इसलिए तू मैं करते रहते हैं और झगड़ा करते रहते हैं। अभी देखो हिंदू मुसलमान झगड़ा कर रहे हैं, किस जगह पर और कोई लोग झगड़ा कर रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि ना उन हिंदुओं को पता है कि भगवान क्या है, ना उन मुसलमानों को पता है भगवान क्या है, ना और सिखों को पता है भगवान क्या है, और लड़ रहे हैं। बोले मैं जन्म से हिंदू हूँ, तुम जन्म से हो, तुम जन्म से हो, तुम जन्म से काले हो, तुम जन्म से गोरे हो, झगड़े कर रहे हैं। अमेरिका में क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट का झगड़ा चलता है, वाइट्स एंड ब्लैक्स। ब्लैक्स वाले बस में वाइट लोग चढ़ते नहीं, वाइट वाले लोग ब्लैक में चढ़ते नहीं, उधर वो झगड़ा है, हमारे यहाँ पे दूसरा झगड़ा है। लेकिन झगड़ा केवल एक ही बात पे होता है, शरीर के आधार पर। तुम्हारा शरीर काला है, मेरा गोरा है, ये झगड़ा है। तुम्हारा शरीर ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है, मेरा शरीर चांबार के घर में जन्म लिया है, तो झगड़ा है। इस भगवान की दर नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। नाम खाली भगवान का है, मैं हिंदू धर्म का हूँ, तुम इस धर्म के हो, तो मैं उस धर्म का हूँ, लेकिन ये सब शरीर का पहचान है, आत्मा का पहचान नहीं है। और कोई भी नाम आपका सरनेम कोई भी रहेगा, लेकिन तुमको अगर इधर इधर प्रिक करेंगे तो क्या होगा, लाल रंग का खूनी आएगा ना आपके अंदर, हरा आता है इनके अंदर, ब्लू आता है इनके अंदर, पीला आता है इनके अंदर, हरा नीला रंग का आता है, ऐसा होता है क्या? सबके अंदर वही खून आता है, और सबको वो सुई मारने के बाद तकलीफ होती है, दर्द होता है, क्योंकि हम सब लोग समान हैं, हम सब लोग उसी भगवान के अंश हैं, चाहे काले रंग के शरीर के हो या गोरे रंग के हो, चाहे अमेरिकन हो या इंडियन हो, हम सभी उसी भगवान के अंश हैं। और जब हम इसको समझते हैं ना, तो हमारे जीवन के अधिकतर समस्याएं समाधान हो जाती है। हमारी गीता में और एक श्लोक है, उसमें लिखा है, विद्या विनय न संपन्ने ब्रह्मणा गवि हस्तिनी शुनी चैव स्वपाके च ब्रह्मण पंडिता समदर्शिना। वो हमारे दुनिया में कैसा होता है, समझो मैं अभी MBBS हूँ और मैंने PhD कर लिया, समझो MD किया और बाद में DM किया, बाद में PhD किया, तो मैं क्या आप उम्मीद करेंगे कि मैं अधिक नंबर बनेगा कि अधिक गर्विष्ठ बनेगा? ऊपर से मैं करोड़पति भी बन गया और ऊपर से धन भी बहुत हो गया, चलो बिजनेस भी अच्छा हो गया मेरा, तो आप क्या उम्मीद करते हो, मैं एकदम नम्र नम्र होते जाएगा कि गर्विष्ठ होते जाएगा? हाँ नेचुरली, पहले MBBS था तो ठीक था, एक थोड़ा सा गर्व था, MD किया तो थोड़ा और एक चला हवा भर गया फुगे में, फिर MD के बाद DM किया तो और बड़ा फुगा हो गया, फिर ऊपर से पैसा भी आया तो और, उस पर सुंदर बीवी आ गई तो फिर क्या कहने उसके। ये सब अधिक विद्या पाने से गर्व बढ़ता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो अधिक विद्या पाने से, जिसको सही विद्या प्राप्त हो गई है, रियल नॉलेज, उसका लक्षण क्या है कि जितनी सही विद्या प्राप्त हो गई है उतना अधिक नम्र हो जाता है वो। उसके लिए पेड़ का उदाहरण देते हैं, मन में कैसे, जिस पेड़ के शाखा के अंदर बहुत सारे फल होते हैं, वो शाखा किधर होती है, ऊपर होती है कि नीचे नीचे झुकी होती है? जितना फल आएगा ना उसके ऊपर, वो और नीचे और नीचे और नीचे आ जाता है, और जितना फल निकालेंगे उतना ऊपर चला जाता है वो, लेकिन जितना फल है उतना झुका हुआ रहता है। मटके के अंदर ना थोड़ा पानी रहेगा ना, बहुत आवाज होता है उसके अंदर, और मटका अगर भरा रहेगा पानी से तो एक तो हिलेगा नहीं नंबर वन, और दूसरा आवाज भी नहीं करेगा। वैसे हमारा विद्या का लक्षण है, और सही विद्या क्या है मालूम है ना, वो MBBS MD और PhD का सही विद्या का मतलब नहीं है, वो दुनिया की विद्या है। अरे पेट में जो गैप है ना इधर, वो भरने के लिए वो सब है काम, बाकी कुछ वैल्यू नहीं उसका। दो वक्त की रोटी कमाने के लिए किया हुआ नाटक है वो सब। आप लोग अपना नाटक कर रहे हो, मैं अपना नाटक कर रहा हूँ, दोनों अपना अपना नाटक कर रहे हैं, लेकिन नाटक केवल पेट भरने का है, वो MD MS करके कुछ कल्याण, लोक कल्याण करने का कुछ प्लानिंग नहीं है उसके अंदर। तो ये सही विद्या नहीं है, बाय द वे ये केवल दो रोटी कमाने की विद्या है। आपके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, इसलिए आपको ज़्यादा पैसा है, मेरे पास कम पैसा है, इतने फर्क है। लेकिन सही विद्या क्या है? सही विद्या वो है जिससे आप जानते हो कि आप कौन हो, सही विद्या वो है जिससे आप जानते हो कि ये कौन है, सही विद्या से जानते हो कि दुनिया क्या है और मैं दुनिया में कहाँ पर हूँ, मेरा पोजीशन क्या है और भगवान कौन है, मेरा रिश्ता क्या है, ये सही विद्या है। ये जिसको पता चलता है ना वो नम्र हो जाता है, उसको जितना भगवान के बारे में ज्ञान होता है ना, उतना वो समझता है कि भगवान के सामने मैं कितना तुच्छ हूँ, भगवान के बिना बहुत बड़ा हूँ मैं, MBBS हूँ वगैरह वगैरह, बहुत सारा मेरे पास डिग्री है, पैसा है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, अधिकार है, पावर है, सब भगवान के बिना है। लेकिन जब जब एक दीपक के सामने समझो सूरज खड़ा हो गया तो दीपक दिखता है क्या किधर? दीपावली में हम दिन रात रात भर दीपक जलाते हैं, कितना प्रकाश होता है, लेकिन वो जले हुए प्रकाश के अंदर जब सूरज को उठता है सुबह तो दिखता है क्या बल्ब किधर? हो सब पंक्ति दिखती किधर? दिखती ही नहीं किधर, क्योंकि सूरज का इतना प्रकाश है कि आपने 1,00,000 भी बल्ब लगाया तो इस सुबह को दिखता है क्या? रास्ते में तो सब लाइट जले रहते हैं, दिन में भी कभी कभी म्युनिसिपैलिटी को बंद नहीं करते, लेकिन दिखते है क्या उसका प्रकाश कुछ? रात को सारा प्रकाश दिखाई पड़ता है आपको, लेकिन सूरज के आते ही इतने सारे हजारों लैंप रास्ते में होते हैं ना, वो बेकार हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे ही भगवान का प्रकाश आपके सामने आ जाता है तो आपको समझ में आता है कि मैं कितना छोटा हूँ, क्या गर्व करने का। ऐसा आपको लगेगा कि आप चींटी हो और हाथी आपके सामने खड़ा है और आप बोल रहे हो पंजा लड़ाओगे क्या, तो हाथी क्या बोलेगा? और आप आपको लोग हंसेंगे अगर आप चींटी हो तो, हाथी के सामने बोल रहे पंजा लड़ाओगे क्या, देखो मेरा कितना मसल है, तो हाथी क्या बोलेगा? हले हंसेगा। लेकिन जो सच्चा बुद्धि वाला आदमी होगा तो हाथी के सामने क्या ताकत दिखाएगा, वो कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे ही हम भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और भगवान को समझते हैं तुरंत हमारे जीवन में नम्रता आ जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि इतने बड़े विशाल भगवान के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो क्या कहा उन्होंने, विद्या विनय न संपन्ने, विद्या आते ही आदमी नम्र बन जाता है, सही विद्या आने के बाद में। अगर किसी के पास नम्रता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये भगवान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना भगवान से जुड़े हुए नम्रता नहीं आ सकती। अगर आप एकदम गरीब से गरीब भी होना तो भी उसका अहंकार होता है, आपको दिखा दूंगा उसको मैं एक दिन, जब पैसा आएगा तो देख लूंगा उसको, तो वो गुस्सा आता है अंदर से, नम्रता नहीं हो सकती है। आपके पास बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे अंदर से गुस्सा रहता है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन अंदर से मेरा क्रोध रहता है अहम की वजह से। ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो जो नम्र हो चुका है भगवान के बारे में जानकर, उसका लक्षण क्या है? ब्रह्मणा गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च, पांच लोगों का वर्णन किया है, बता सकते हो पांच लोग कौन है वो? ब्रह्मणा मतलब सिंपल है, जो ब्राह्मण है, पूजा पूजा करने वाला प्रिस्ट है वो, गवि यानी मतलब क्या होता है, हाँ क्या होता है गई, गवि का मतलब गाय, गाय गऊ, हाँ ब्राह्मण हो गया गऊ हो गया, और हस्तिनी का मतलब क्या, हस्ती एलिफेंट, और शुनि यानी कुत्ता, और स्वपाक, स्वपाक का मतलब क्या है, कुत्ता खाने वाला, चांडाल बोलते हैं उसको। अभी एक हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक आ गए ना हम लोग, अभी ब्राह्मण से लेकर कुत्ता खाने वाले तक पहुंच गए। लेकिन वो कहते हैं कि पांचों लोगों को वो व्यक्ति समान दृष्टि से देखता है, वो ब्राह्मण में भी भगवान को देखता है और कुत्ता खाने वाले के अंदर भी भगवान को देखता है, कुत्ते के अंदर भी भगवान को देखता है, और हाथी के अंदर भी देखता है, बच्चा के अंदर भी देखता है, और गाय के अंदर भी देखता है, और शेर के अंदर भी देखता है। लेकिन गाय के ऊपर जाके हाथ घुमा सकते हो, लेकिन शेर पर हाथ नहीं घुमाते हो, क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान है उसके अंदर, लेकिन ये जो आत्मा अभी उस शरीर में है जो मुझे खा सकता है वो, इसलिए वो दूर से देखेगा भगवान को, लेकिन पास में जाके गले नहीं मिलेगा, ओ हरे कृष्णा आपके अंदर भगवान को देख रहा हूँ मैं। आपने पढ़ा क्या उस दिन पेपर में क्या आया था परसों, वारे कॉलोनी में एक औरत अपने बच्चे को लेकर गई सुबह लेटरिन करने के लिए, तो बच्चा को लेकर चित्ता भागने लगा तो उस जंप मारा उसने ऊपर, तो शेर शेर डर गया, चित्ता जो है चित्ता जिसके मुंह में बालक था उसका, वो माँ ने ऐसा झटक मारा उसके ऊपर कि वो चित्ता घबर गया, बच्चे को छोड़ के भाग गया जंगल में वो। तो वो शेर के अंदर भी भगवान देख सकते हैं आप, जो आपको बच्चे को लेके जा रहे हैं, लेकिन उस समय पे आपको क्या करना है वो अलग चीज़ है। तो एक एक वो भक्त जो है जो सबको समान देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शेर को बोल रहा है जा रहे हो तू भी बच्चा बेटा भूखा है या खा ले मेरे बच्चे को, कोई बात नहीं मैं भी लंच करता हूँ अभी अपना लंच कर लो, वो उस समय एक्शन अलग होती है लेकिन चेतना सेम होती है। संत जो होता है ना, संत जो है उसको पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान होता है, वो सबके अंदर भगवान देखता है, फिर भी सबके साथ अलग अलग व्यवहार करता है वो, यही उसकी बुद्धि का लक्षण है। तो हम लोगों को अगर जीवन में सुखी होना है ना, सबसे पहले हमको सत्य को दर्शन करने को सीखना चाहिए। और सत्य ये है कि हमारे आसपास जो भी कुछ है वो सबके अंदर भगवान है। तब जाकर आपका हर चीज़ को देखना परफेक्ट है। और जब आप हर चीज़ को परफेक्ट देखते हो तो आपने बाद में काम भी परफेक्ट करते हो। आज मैं आपको देख रहा हूँ कि मैडम एनेस्थेटिस्ट है, तो मेरा एक उसके व्यवहार है, आप ये है, आप फलाना है, आप वार्ड बॉय है, आप डॉक्टर है, आप नर्स है, तो मेरा अलग अलग व्यवहार है आपके साथ। किसी को मैं हाँ गुड मॉर्निंग सर, किसी को ए इधर आ जा, ऐसे व्यवहार होता है ना। क्योंकि मेरे को मेरी हर व्यक्ति को देखने की दृष्टि अलग है। किसी को मैं इक्वल समझता हूँ, किसी को हायर समझता हूँ, किसी को लोअर समझता हूँ, और वैसा व्यवहार करता हूँ मैं। लेकिन जैसे ही आप भगवान का भक्त बनते हो ना, आप सबके अंदर भगवान को देखोगे, डॉक्टर के अंदर भी देखोगे, नर्स के अंदर भी देखोगे, और बाकी लोगों के अंदर भी देखोगे। तो एक व्यवहार बदल जाता है, तुरंत बदल जाता है, और सबसे प्रेम से बात करेंगे आप। आपके साथ में अलग व्यवहार हो, आपसे अलग नहीं करेंगे, सबसे हरे कृष्णा प्रेम से बात करेंगे, स्माइल देखे, क्योंकि सबके अंदर भगवान को देख रहे हैं। और यही सुख का रहस्य है। हम क्या देखते हैं, दुर्योधन ने क्या देखा था, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरे पक्ष में है, ये मेरे शत्रु के पक्ष में है, ये मेरा चीज़ को लेके जा रहा है और मुझे उसकी चीज़ चाहिए जो मेरी समझता हूँ। अर्जुन दुर्योधन को क्या लगा था कि सारा राज्य मेरा होना चाहिए और ये लोगों को जंगल में जाना चाहिए, है ना। भेदभाव, स्वार्थ के ऊपर बना हुआ भेदभाव। और हम लोग भी जब स्वार्थ के ऊपर रहकर जीवन जीते हैं ना, तो सबसे पहले दुखी हम लोग रहते हैं, याद रखने की बात है। दुख का मूल कारण यह है कि हम लोग स्वार्थ के आधार पर जीवन जी रहे हैं। और परमार्थ के आधार पर जीवन का मतलब है कि आप सबके अंदर भगवान को पहले देख रहे हैं, तब जाकर आपकी उनकी सेवा अच्छी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हॉस्पिटल का एग्जाम्पल देना है, समझो आपकी मम्मी यहाँ एडमिट हो गई, मैं कई बार एग्जाम्पल लेता हूँ ये, तो आप सब लोगों को फोन करेंगे, हे कौन ड्यूटी पर, कौन है सिस्टर, और रात्रि कौन ड्यूटी पर है, डॉक्टर कौन है, नर्स कौन है, आए भाई कौन है, वार्ड बॉय कौन है, इमरजेंसी में कौन कॉल पे है, सबको फोन करेंगे आप। लेकिन जब किसी और की मम्मी आएगी तो आप किसी को फोन नहीं करेंगे, कार्ड पहुँच कर घर निकल जाएंगे आप, क्योंकि हम अपनी मम्मी को स्पेशल समझते हैं और बाकियों की मम्मियों को वैल्यू देते नहीं हैं। लेकिन जब आप भगवान के भक्त बन जाओगे ना, तो हमारे गुरुजी ने हमको बताया है कि तुम्हारे आई कैंप में आने वाले हर एक बुड्ढा बुड्ढी जो आएंगे ना अंधे होकर, वो सबको माँ बाप की तरह ट्रीटमेंट दे दो, ये सोच के ट्रीटमेंट दे दो कि वो आपकी माँ और पिताजी है। तो आपके माँ और पिताजी के लिए आप क्या क्या करोगे, वो सब उनके लिए करोगे आप। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी दृष्टि समान हो गई, सबके प्रति एक हो गई, अपने जाति धर्म देश भाषा कलर के ऊपर भेद नहीं किया, आपकी दृष्टि सबके लिए समान हो गई। जैसे हमारे हरे कृष्ण में कैसे सभी लेडीज को क्या बोलते हैं, माता जी, कभी कभी वहाँ से बोलते हैं हे मैं माता जी है क्या, मैं बड़ी लहान तो लग्न पड़ वैसे मैं, तो माता जी क्यों बोलते हैं मुझे आप, माता जी मतलब ऐसा हुआ निर्मला माता जी का, सब बड़ा माता जी का नाम याद आता है कि भाई वो उधर बोर्ड पे लगा था ना निर्मला माता जी सहज ध्यान, ऐसे बड़ा बहुत बड़ी भक्त माता जी का ध्यान में आता है मन। लेकिन जब हम माता जी बोलते हैं तो मतलब क्या है कि आप हमारे माँ के समान हैं। ये दुनिया में एक औरत छोड़ के जो हमारी बीवी है, सब हमारे माँ के समान है, ये उसका अर्थ है उसके पीछे। तो हम सभी लेडीज़ को एक लेवल पर ला के खड़ा करते हैं कि सब जो लेडीज़ हैं हमारी माँ के समान है, ताकि हमारे मन में वो विचार ना आ जाए कि ये अच्छी है, मेरे बीवी से भी अच्छी दिखती है, ये विचार मन में आना नहीं चाहिए। एक लड़की, एक औरत छोड़कर जो हमारी पत्नी हो गई है, बाकी सारी जो जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे इतनी सी हो या उतनी बड़ी हो या बूढ़ी उम्र की हो, वो सब हमारे माता के समान है। ये दृष्टि केवल भक्त बनने के बाद ही आ सकती है, क्योंकि हम उस सब जीव को आदर से देखना शुरू करते हैं जब हम भक्त बनते हैं, सबको सम्मान देते। क्या बोलते हैं हम लोग, तृणादपि सुनिचेना तरोरूपी सहिर अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। अमानिना मान देना मतलब क्या है, खुद अमानी यानी कि खुद के लिए मान की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मान देना, सबको मान देते हैं। क्यों देते हैं मान सबको, नहीं ये बहुत अमीर आदमी है, ये बड़ा बॉस है, ये बड़ी मैडम बहुत बड़ी है, इसलिए सम्मान दे रहे हैं। वो तो दुनिया में सब लोग में करते हैं, घर में सम्मान नहीं करते उनका। मैडम रिटायर हो गए तो पूछते भी नहीं उनको, जब तक मैडम पोजीशन में है तब तक गुड मॉर्निंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम। वो रियल सम्मान नहीं है। रियल सम्मान मतलब क्या, कि हम सब आपके अंदर भगवान को देख रहे हैं, इसलिए मेरे मन में स्वतः सम्मान आता है, क्योंकि मैं भगवान को सम्मान करता हूँ, आपके अंदर उनको देखता हूँ, तो अपने आप मेरे मन में सम्मान की भावना पैदा होती है। इसलिए माता जी, प्रभु जी, ऐसा वाक्य क्यों मन मुँह में आता है हमारे? प्रभु जी बोलना आसान नहीं किसी को, प्रभु जी। तो मैं प्रभु जी क्यों बोलूँ, मैं खुद प्रभु जी हूँ। ये हमारी भावना होती है ना, लोग मुझे प्रभु जी बोलना चाहिए, मैं क्यों आपको प्रभु जी बोलूँ? मैं इतने साल से हरे कृष्ण में हूँ, पहले मुझे प्रभु जी बोलो फिर मैं आपको प्रभु जी बोलता हूँ। मतलब वो खुद प्रभु जी है ही नहीं वो, क्योंकि उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अब तक आई है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब भी नम्रता है। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग आ गई है, ऑलरेडी यू आर हम्बल, आप ऑलरेडी नम्र बन चुके। बिना भगवान के ऐसी सर्वसमावेशक नम्रता नहीं आ सकती। आप घर में पापा को और फादर इन लॉ को सम्मान दे सकते हो, वो देना ही पड़ता है, क्या करेंगे, समाज की रिवाज है। लेकिन सबके लिए सर्वसमावेशक अगर रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान आपको लगना चाहिए, तो बिना भगवान की भावना के नहीं आ सकती हो। वो यही यहाँ पर बताया है। आपके हमारे अंदर झगड़ा कब मिट सकता है? जब आप हमारे अंदर भगवान को देखेंगे और मैं आपके अंदर भगवान को देखूंगा, बहुत सारे झगड़े वहाँ पर हल हो जाएंगे। जब मैं आपको स्वार्थहीन, स्वार्थ छोड़कर देखूंगा तो झगड़े नहीं होंगे, और स्वार्थ पर टिका रहूंगा तो 50 झगड़े होंगे, 50 चीज़ पर झगड़े होंगे, 50 विषय पर झगड़े होते रहेंगे। तो भगवान का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भगवान का अपने जीवन में इतना महत्व है, और दुर्भाग्य से उसी को भूल चुके हम लोग, जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है उसको भूल कर बाकी सब हम याद रखते हैं। क्या बोलते हैं, अरे भूलना क्या था और क्या भूल गया, खुद रहा याद और खुदा भूल गया। क्या बोला, खुद रहा याद खुदा भूल गया, अरे भूलना क्या था और क्या भूल गया। तो ये हमारे जीवन का सबका दुख का कारण है, क्योंकि जो याद रखना चाहिए वो हम भूल जाते हैं, और जो भूलना चाहिए उसको याद रखते हैं। याद करना है तो उनको याद करना चाहिए, जब उनको याद करेंगे सबके प्रति आपके मन में प्रेम और आदर होगा। उनको भूल जाएंगे तो स्वार्थ के वश तू तू मैं मेरा तेरा दुश्मन शत्रु ये सब शुरू हो जाएगा, और दुर्योधन उसका प्रतीक है। स्वार्थ के वश को केवल देख रहा है, ये सब सभा के अंदर मेरा मित्र कौन है, हमारा शत्रु कौन है। हिरण्यकश्यप का भी यही था, वो सिखाते थे कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है। तो प्रहलाद को अच्छा लगा नहीं, बोला ये अच्छा, ऐसा सोचना अच्छा नहीं, सब हमारे मित्र होने चाहिए, क्यों भेदभाव करना है उसके अंदर। नहीं, भेदभाव तब होता है जब हम स्वार्थी होते हैं, जब खुद का केवल हित देखते हैं ना, तो हमारे मित्र और शत्रु बन जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान के भक्त होते हैं तो उस व्यक्ति को अजात शत्रु कहा गया है। मतलब क्या, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। धर्मराज को दुर्योधन शत्रु मानता था, लेकिन धर्मराज उसको शत्रु नहीं मानता था। उसको मन में क्या बोलता था, वो सुयोधन बोलता था, सुयोधन। जनता उसको दुर्योधन बोलती थी, लेकिन धर्मराज उनको सुयोधन नाम से पुकारता था। क्योंकि दुर ये प्रयोग जो है ना, वो गलत लोगों के लिए करते हैं, दुरुपयोग, दुर्गति है ना, ये नेगेटिव शब्द है। तो दुर्योधन, तो उसको वो सुयोधन पुकारता था, और उसके लिस्ट के अंदर दुर्योधन शत्रु नहीं था। दुर्योधन की लिस्ट के अंदर वो टॉप मोस्ट शत्रु था, युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि वो राजा बनेगा कि मैं बनूंगा, यह कॉम्पिटिशन थी उनकी, इसलिए टॉप लिस्ट में दुर्योधन का सूत्र शत्रु था युधिष्ठिर महाराज। लेकिन युधिष्ठिर के महाराज के लिस्ट में किधर भी शत्रु के लिस्ट में दुर्योधन नहीं था, ना युधिष्ठिर महाराज की शत्रु की लिस्ट थी, लिस्ट ही नहीं थी उसके पास, सब उनके मित्र थे। यही फर्क होता है। और क्योंकि पांडवों को और युधिष्ठिर को शत्रु मानता था वो, इसलिए वो बहुत बहुत परेशान रहा करता था, हमेशा परमानेंटली अनहैप्पी। और युधिष्ठिर महाराज सबको समान देखते हुए हमेशा आनंद रहते थे, उसका प्रमाण भी है कि युधिष्ठिर महाराज कैसे सबके अंदर भगवान को देखते थे। वो क्या हुआ ना, वो जंगल में जब भी वो वनवास के लिए भेजा ना, वो चालाकी करके जुआ खेल के फंसा के जंगल में भेज दिया उनको वनवास करने के लिए। उधर भी ना उनको खिंचाने के लिए क्या किया मन में, जहाँ पर ये वनवास कर रहे ना उधर जाके तंबू लगा दिया अपना, एकदम 5-स्टार तंबू लगा दिया। उधर 5-स्टार खाना लेके आए, 5-स्टार सुंदर लड़कियों को लेके आए, वाद्य लेके आए, बोले एंजॉय करेंगे यहाँ पर, उनका जलाएंगे उनको। हम लोग जंगल में बेचारे नंगे पैर घूम रहे, कंदमूल खा रहे, उनके सामने पंच पकवान, स्त्रियाँ, दारू, मदिरा, 5-स्टार गलम नरम नरम गद्दियाँ, एंजॉय करेंगे। तो एंजॉय करने में शराब बिराब पिया तो लोकल यक्षों को छेड़ दिया उन्होंने। यक्ष लोगों का होता ना, यक्ष लोगों का समुदाय था, यक्ष यानी कि दो देवताओं के अंदर एक होते हैं यक्ष लोग, उनको छेड़ दिया। तो यक्ष लोगों को गुस्सा आया, वो तो परलोक के लोग हैं ना, वो आए और उन्होंने दुर्योधन को अरेस्ट कर दिया, युद्ध करके सबको परास्त कर दिया, सब लड़कियां भाग गई, सब सैनिक भाग गए और दुर्योधन जैसे राज युवराज को कैद कर दिया उन्होंने। और क्या क्या मालूम है, उधर के जंगल के वेलियों को निकाल के वेलियों से बांध दिया उसको, पेड़ के वेलियों को लेकर बांध दिया और घसीट के लेके जाने लगे उसको अपनी ओर, अपने राज्य की ओर। तो ये खबर आ गई इनके वनवास के झोपड़ी में कि दुर्योधन आया था, अपना महल जैसा टेम्बू लगाया था और आनंद कर रहा था दारू पे के, जब मस्त हो गया तो यक्षों का अपराध किया तो यक्षों ने परास्त किया और बांध के घसीट को लेके जा रहे उसको। तो भीम ने बोला अच्छा हो गया, अच्छा ही हो गया बोला वो। लेकिन दूसरे ने बोला ऐसा बोलने का काम नहीं है, यक्षों के सामने वो हमारा भाई है, हमारा कुछ भी हिसाब किताब होगा अपने अपने आप में, लेकिन जब बाहर का आदमी आता है ना तो हम लोग 105 है, अगर हमारा हिसाब करोगे तो हम 5 है और वो 100 है, हमारी पट्टी नहीं है। लेकिन तीसरा आदमी बाहर का आया तो हम 105 है, जाओ उसको बचा के लेके आओ। बोले क्या बात कर रहे हैं आप, अरे बोलते ना सुंटी वासन खोखला गेला अपने आप उसका इलाज हो रहा है, काहे को तकलीफ करने का, छोड़ो उसको। नहीं नहीं, वो हमारा भाई है, हमारे परिवार का आदमी है, बाहर के आदमी ने आके उसको अरेस्ट किया है, जाओ छुड़ा के लेके आओ उसको। तो बड़ी तकलीफ से भीम और अर्जुन निकले, उन्होंने सहजता से युद्ध किया और यक्षों को परास्त किया और दुर्योधन को फ्री कर दिया। इसको कहते हैं बड़ा दिल, क्योंकि वो भगवान को देखता है सब जगह पर, मई सर्व पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान को देखता है, दुश्मन के अंदर भी भगवान को देखता है वो, इसलिए ऐसा विचार कर सकता है वो। इतना भीमसेन का विचार नहीं था, बोला अच्छा हो गया, वो ज़्यादा होशियारी करता था ना, इधर हमारे सामने आके तंबू लगाया, इधर पंच पकवान खा रहा है, इधर डांस कर रहा है लड़कियों के साथ में, हमको खिजा रहा है, अच्छा हो गया, दंड अच्छा मिल गया उसको, ऐसा उसका विचार है। लेकिन युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है मालूम है आपको, युद्ध के अंदर भी जिसका मन स्थिर रहता है उसका नाम युधिष्ठिर है। ये तो युद्ध नहीं हो रहा था, ये तो ऐसे ही चल रहा है, तो शांति से वो बोलता है जाओ भीमसेन, ऐसा बात नहीं करना चाहिए, जाओ गदा लो, अर्जुन धनुष लो, जाओ अपने भाई को छुड़ा के लेके आओ। तो अपने मन के खिलाफ गए और भाई को छुड़ा के आए, ये युधिष्ठिर की मानता है, ये भक्त का लक्षण है। तो हम लोग खाली कहानी सुनते हैं, महाभारत टीवी पे देखते हैं, लेकिन वो जो सीखते हैं उसमें से वो जीवन में कब उतारेंगे? नहीं, महाभारत के टीवी में अच्छा है वो, अपने को क्या करना है उससे सीरियल देखा बंद कर दिया सो गए बस, क्या करना है अपने को उससे? लेकिन सीरियल में क्या सीखते हम कि ऐसा भी हो सकता है, दुश्मन को भी भगवान को उसके अंदर देखकर उसके सामने ऐसा व्यवहार हो सकता है, यही वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव कौन है, भगवान का भक्त कौन है, संत कौन है? वो ये है कि वो दुश्मन के अंदर ही भगवान को देखता है। और पहले दुश्मन तो किसी को मानता ही नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि इसका दुश्मन है, लेकिन वो तो उसके अंदर भी भगवान को देखता है। अगर नहीं देखा होता तो भीमसेन ने कब का मार दिया होता उसको मालूम है? कितने समय ऐसे थे कि भीम तो उसको जान से मारने पर तुला हुआ था, वो हमेशा उसका एक ही डायलॉग हुआ करता था, उठा के पटक दूं उठा के पटक दूं क्या दिस इज द ओनली क्वेश्चन इज टू आस्क हिज ब्रदर। भाई बोलता था चुप रहो, नहीं तो भीमसेन ने दुर्योधन को कब का मार दिया होता अगर युधिष्ठिर नहीं होता तो, और वो कभी का युद्ध हो चुका होता युधिष्ठिर ना होता तो। युधिष्ठिर था इसलिए युद्ध को इतना देर लगी, इतनी देर क्यों लगी, क्योंकि हर बार उसने कोशिश किया कि युद्ध ना हो तो अच्छा है, हम लोग योग्य लोग हैं, राजा करने के योग्य है, लेकिन चलेगा आपको, पांच गांव भी चलेगा, चलो एक गांव के नाम, एक गांव का नाम एक भाई के भी चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों झगड़ा करने का, उसमें भोगने दो उसको, राज्य का बनाना का है उसको, तो लेट हिम एंजॉय। एकदम लास्ट क्या बोला दुर्योधन कि तुमको सुई के ऊपर जितनी जगह होती ना उतनी जगह भी नहीं दूंगा आपको। तब फिर युद्ध होने का ठहर गया, तब युद्ध करना पड़ा, नहीं तो युधिष्ठिर का युद्ध करने का मूड नहीं था, क्योंकि वो भक्त था भगवान का, उसको खून खराबे में इंटरेस्ट नहीं था, एक्सपर्ट था वो युद्ध में, लेकिन उसको बेकार में खून खराबा स्वार्थ के लिए बहना बहाना उसको मूड नहीं था उसका। और एक उसका प्रूफ है, युद्ध करके वो जीत गया और राजा बनने का समय आया, राजा बनने का समय आया तो रो रहा है वो बेचारा। हम लोग तो खुशियाँ मनेंगे, बाप रे जिंदगी भर वन में घुमा, अभी राजा बनने का मौका आया तो एंजॉय यार, वाई वेस्ट टाइम, तो वो रो रहा है। भगवान बोल रहे क्यों रो रहे हो, अभी क्या हो गया? बोले मेरे लिए इतना लोगों का खून खराब हो गया, मुझे राजा बनाने के लिए इतना लोगों को मरना पड़ा और मुझे मारना पड़ा उन लोगों को, बहुत दुख हो रहा है उसको। तो उसको भीम भीष्म के पास लेके गए, भीष्मदेव जरा समझाना इसको, ये रो रहा है कि इसके वजह से इतने लोगों का खून खराब हो गया। तो फिर भी वो नहीं माने, इतने रो रहे थे, तो उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ पश्चाताप माफी के लिए, ऐसा एक पूजा किया पूरा दुख की वजह से कि मैं इतना लोगों को मरना पड़ा मुझे राजा बनने के लिए। ये भक्त है, तो आपका बोलो दुनिया मरने दो मुझे राजा बनना चाहिए, हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ऐसे नहीं थे, दुखी थे वो राजा बनने पर भी। तो हमको ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए, और ये मत समझना अरे वो तो युधिष्ठिर था, मैं थोड़ी युधिष्ठिर हूँ, वो तो महान था, तुमसे क्या बाबा तुम्हें तर, ऐसा अपना यूजुअल स्टाइल रहता है बोलने का ना, कि अपने को महान बनने की इच्छा नहीं है, और कैसे टालने का वो बात, तुमसे क्या बाबा तुम्हें तो फारत मोटे, तुम्हें क्या बाबा डॉक्टर, तुम्हें उड़े सीख ले माणस, हम लोग कैसे भक्त बन सकते हैं, ऐसा ये लोगों का यूजुअल स्टाइल रहता है बोलने का। लेकिन हर व्यक्ति को युधिष्ठिर जैसा बनने का मौका तो भगवान ने दिया है ना। चलो राज्य की छोड़ दो, देश की छोड़ दो, तुम्हारे श्रद्धानंद के अंदर जो काम करते हैं उनके अंदर तो भगवान को देखो कम से कम, ज़्यादा नहीं है 35-30 लोग है, ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा बड़ा टास्क भी नहीं है आपका, क्योंकि 1000 लोग के अंदर भगवान को देखना है, उससे अच्छा 35 लोग में देखना आसान है ना। अरे चलो वो भी डिफिकल्ट है, तो घर में 4 लोग रहते हैं, एक पति एक पत्नी एक माँ और 2 बच्चे, 5 लोग हो गए, तो कम से कम उनमें तो देखो पहला। अरे वो भी जमता नहीं है तो घर में जो मंदिर बना के रखा है उसमें तो देखो भगवान को, शुरू तो करो कहीं से कहीं, तो आगे फिर कुछ मौका आएगा, दृष्टि विशाल हो जाएगी धीरे धीरे, लेकिन शुरुआत तो करना चाहिए। इसीलिए हमारे श्रद्धानंद अस्पताल में, भक्ति वेदांत अस्पताल में, पीवी दोषी अस्पताल में, सब जगह हम कोशिश करते हैं कि ये न के न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, लोगों को भगवान के साथ में जोड़ना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए उनको कैसे भी करके। क्या हमारा प्रण होना चाहिए, अगर मेरे सामने कोई आया तो उसको भगवान का कनेक्शन मिलना ही चाहिए। वो कैसा होता है LIC? हाँ अनुराधा मैडम, हरे कृष्णा। वो LIC का आदमी कैसा होता है, उसका एक प्रण रहता है कि मैं शादी में जाऊँ, बारसा में जाऊँ, एंगेजमेंट में जाऊँ, मैयत में भी जाऊँ, किधर भी जाऊँ, मेंबर बनाना है LIC का, पॉलिसी बेचना है। उधर वो शमशान में किसी के बॉडी कॉफिन को डाल रहे हैं जमीन के अंदर, और वो कान में बोल रहे हैं एक आपसे बात करना है 10 मिनट, रहे इसके बाद 10 मिनट मिलेंगे ना मुझे, आप एक नया पॉलिसी आया जरा बताना है आपको। होता है ना ऐसे, आपने अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया है, कितना बड़ा प्रसंग है वो, किसी का कोई रो रहा है पब्लिक, उसका बॉडी उधर कॉफिन में डाल रहे हैं, शमशान में डाल रहे हैं, कब्र में, और ये बोल रहा है जरा जाने के पहले मिलना, एक नई पॉलिसी आई है बताना है आपको जरा। तो कैसा फिक्स रहता है वो अपना माइंड फिक्स रहता है उसका, शादी हो या अंत यात्रा, इंश्योरेंस की पॉलिसी देना है, मेरे पास जो भी आएगा उसको ये पहचान तो करा के देना है, वो पॉलिसी ले या ना ले बताना मेरा फर्ज है, अवगत कराना मेरा ड्यूटी है। वैसे भक्तों का होना चाहिए, वैसे हमारा होना चाहिए कि हमारे सामने जो आएगा उसका भगवान का कनेक्टिविटी हम देंगे, भगवान का कनेक्शन देंगे, उसको एक्टिवेट किया हुआ कार्ड देंगे, एक्टिवेट किया हुआ कार्ड भगवान का देंगे, उसके अंदर फिट कर देंगे ताकि उसको भगवान की याद आती रहेगी। इसलिए हमने आज रिक्वेस्ट किया है डॉक्टर हमारे दुबे सर को। हाँ सब लोग ध्यान से सुनना कि जो लोगों को ऑपरेशन करते हैं ना हम लोग आँखों का, उनको भगवान का चित्रपट दिखाओ पट्टी निकालने के बाद, ताकि पहला भगवान को इतना दिन देखा नहीं उसने, किसी को भी देखा नहीं, पट्टी खोलने के बाद जो दिखने में लगेगा ना उसको, तो सबसे पहले भगवान को देखेगा वो। कर सकते ना, ये डिफिकल्ट तो नहीं कुछ, एक फोटो की जरूरत है खाली, और याद रखना है कि इसका पट्टी खोलने का समय आ गया है। उसको पूछो मोर पंख किधर है, बांसुरी किधर है बोल, तो बोलेगा ये बांसुरी है, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल। खाली एक ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो गया, दूसरा भी सक्सेसफुल है। कौन सा? भगवान को जोड़ने का ऑपरेशन। एक कैटरेक्ट निकालने का ऑपरेशन हो गया आपका सक्सेसफुल, और एक भगवान को जोड़ने का ऑपरेशन था आपका, वो भी सक्सेसफुल हो गया। बहुत ज़रूरी है वो, नहीं तो क्या है? दुनिया में सब लोग ऑपरेशन करते हैं, आप लोग क्या अलग बात कर रहे हो? सब लोग कर रहे हैं, पेको लेज़र लेंस डाल के बिना डाल के दुनिया कर रही है। हम लोग कुछ बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं अच्छा कार्य, लेकिन हम लोग का कार्य स्पेशल कब होगा? जब वो अंधा आदमी इधर आएगा, उसका ऑपरेशन करेंगे, उसका पट्टी खोलेंगे, तो पहला वो भगवान को देखेगा। ऐसा इंतजाम होना चाहिए यहाँ पर, तब आपके आपका ऑपरेशन जो है ना वो परफेक्ट हो गया। अभी पट्टी निकलेगी ना आपकी, आपको बोलना है फोटो तैयार करो पहला, फिर पट्टी निकालो। एक तो आपके हमारी तरफ से होगा, या तो आपकी तरफ से होगा, दोनों तरफ से होगा, लेकिन लाभ होना चाहिए। आपको बोलना है ये हरा पट्टी निकालने के पहले फोटो की जरिए पहले बताओ, फोटो तैयार रखो फिर पट्टी खोलो, फिर मैं देखूंगा। ये होना चाहिए, ये हो गया तो स्पेशल हो गया कुछ, समथिंग न्यू। दुनिया नहीं करते, हम लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए आँखों के ऑपरेशन होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास बिस्तर में टाइफॉइड लेके भी आएगा ना, उसको भी भगवान की याद दिलाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमारे पास हमेशा भगवान का नाम गूंजते रहता है, जाने अनजाने में कान पे गिरते रहता है। यहाँ से अप डाउन भी करेंगे तो यहाँ पर भगवान दिखाई पड़ते हैं, ऐसा दीवार में घूम के देखेंगे तो भगवान दिखाई पड़ते हैं, स्वामी जी का चित्रपट दिखाई पड़ता है। वो कोई फिल्म स्टार नहीं है, उनको देख के फिल्म की याद आएगी, उनको देख के तो ऐसे साधु की याद आएगी, भजन की याद आएगी, तपस्या की याद आएगी, है ना, ध्यान करने वाले लोगों की याद आएगी। उधर अगर वो निकाल के अगर अमिताभ बच्चन का लगाया तो फिल्म की याद आएगी, दीवार जंजीर और शोले याद आएगा आपको। लेकिन इनको देख के क्या याद आएगा? तपस्या त्याग भजन भक्ति याद आएगी। इसलिए सब कुछ ये अलग बना के रखा है, ताकि कहीं भी देखो भगवान की याद आएगी। और ये इसमें लिखा है श्लोक में, क्या लिखा है? समम पश्चन्नि सर्वत्र, इत्र तित्र नहीं, सर्वत्र, सब जगह भगवान को देख रहा है आदमी ना, वो कभी दुखी नहीं हो सकता है, और खुद दुखी नहीं हो सकता है, और उसको देखकर दूसरे भी दुखी नहीं हो सकते डबल लाभ है उसका। खुद तो खुश रहेगा ही वो, लेकिन उसको देख के लोग भी खुश हो जाएंगे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, सब लोग का धन्यवाद बहुत बहुत। कोई प्रश्न है किसी का? ये जुबे जी कोई प्रश्न है आपका, पूछ लो। पता नहीं आगे पूछने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप भी पूछ लो। ये सुमेधा जी बोलिए। मई सर्वत्र पश्यन्ति, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होना चाहिए, क्यों नहीं, मुंडी क्यों हिलाने का? होगा, क्यों नहीं होगा? इच्छा तो करो पहले, इच्छा होना चाहिए ना पहले। किसी ने इच्छा किया था, अरे घर में क्यों फोन, रोड पर भी फोन होना चाहिए, चलते फिरते फोन होना चाहिए। पहले हम बचपन में कैसा था ना, मैंने आपको बचपन में घर से निकले ना तो गए आप, वापस आने तक मिलेंगे नहीं, घर में फोन करते रहेंगे, आले का घरी नहीं अजून ना आले आता ये तिल, फिर दोबारा फोन करेंगे नहीं अभी अभी पहुँचे नहीं है, पहुँचते होंगे अभी, आज लेट हो गया पता नहीं क्यों। तो जब घर पे आएगा तो भी मिलेगा फ़ोन पे वो, तो फिर वो ट्रिंग ट्रिंग वाला फ़ोन उठा के, बड़ा इतना हैवी फ़ोन उठा के कान पे लगाएगा, फिर बात करेगा उससे। तो लोगों को लगा ऐसे, अरे घर पे ही जाके फ़ोन पे बात करने का, चलते फिरते बात होनी चाहिए, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते फ़ोन होना चाहिए। ये जब इच्छा हुई ना तभी मोबाइल का शोध किया उन्होंने, और मोबाइल पैदा हो गया। फिर ऐसी इच्छा हो गई, अरे इनकमिंग का 4-16 रुपया पर मिनट और आउटगोइंग का 24 रुपया मिनट, ये क्या बात हुई, एकदम सस्ता होना चाहिए। तो आज देखो कंपटीशन चला, कंपटीशन फ्री में मिल रहा है, फ्री में जियो ये वो लब मिल रहा है, मतलब पहले किसी ने तो इच्छा किया था ऐसा होना चाहिए, और वो हाथ पे ऐसा वीडियो दिखने को माना चाहिए, हाथ को, हाथ में ऐसा चलते फिरते ऐसे हाथ में छोटे स्क्रीन पर पिक्चर दिखना चाहिए, पिक्चर आ जाए ना सब लोग ऐसा ट्रेन में, इतनी भीड़ है फिर भी वो लगा के देख रहे हो, बाप रे इतना उसका मन गुम हो गया कि भीड़ भीड़ का फर्क नहीं पड़ता, गर्मी सर्दी लोग मुंह पोछ रहे हैं शर्ट को उसको, लेकिन वो अपना देख रहे हैं क्यों? कभी जमाने में इच्छा किया था कि हाथ में ऐसा एक सोना था स्क्रीन, उसके अंदर दीवार देखने को मिलना चाहिए, कभी भी चाहे मर्जी तभी दीवार देख सकते हैं अमिताभ बच्चन का, तो पहले इच्छा होना चाहिए ना। तो वैसे आपका पहले इच्छा होना चाहिए कि यस मैंने आज सुना है भगवद गीता से कि मुझे सबके अंदर भगवान को देखना है, इच्छा तो करो पहले, फिर भगवान आपको सिखाएंगे 1, 2, 4, 400, 1000, 5000, 10000, फिर पेड़, फिर टेबल कुर्सी, सबके अंदर भगवान को देखेंगे आप। पहले इच्छा करना चाहिए, इच्छा होगी वेयर देर इज विल देर इज वे, यू शस्ट फर्स्ट डिजायर, फर्स्ट डिजायर फर्स्ट हैव अ विल, देन गॉड विल शो यू द वे, है ना, भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। इसलिए ऐसे ही इतने से अंडे में मत रहो, हमेशा विशाल दृष्टि से दुनिया को देखो, संकुचित दुनिया में मत रहो, दरवाजे खोल देने चाहिए, दरवाजे खुलेंगे तो आपको दुनिया अलग दिखेगी, जो ऐसा फट में देखेंगे दुनिया को दुनिया अलग दिखेगी, दरवाजा खोल के देखेंगे तो दुनिया आपको अलग दिखेगी, दुनिया वैसे ही थी पहले लेकिन आप देख रहे थे फट में से इसलिए आपको छोटा दिखाई पड़ रहा था, जब दरवाजा खोलेंगे तो दुनिया जैसी थी वैसे आपको दिखाई पड़ेगी। वैसे ही जब भगवान की दृष्टि अंदर लेंगे हृदय में तो जैसी दुनिया है सत्य रूप में आपको नजर आएगी, दर्शन आपको मिलेगा उस दृष्टि से मिलेगा, इसी को भगवान की भक्ति कहते हैं, सत्य दृष्टि से दुनिया को देखना और भगवान को देखना और सत्य को देखना, ये जीवन की परिपूर्णता है। उसके लिए MBA MS करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए दिल चाहिए, दिल की अमीरता चाहिए और दिल की विद्या चाहिए, तो फिर आपको जैसे जैसे चीज़ है वैसे वैसे वो दिखाई पड़ेगी, भूल भुलैया दिखाई नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही दिखाई पड़ेगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।